जकरिया अध्याय एक। जकरिया की पुस्तक अध्याय एक खोले। आपको ध्यान होगा कि हगाय अपने भविष्यवाणी राजा दारा के दूसरे वर्ष में आरंभ करता है। इसकी पहली भविष्यवाणी राजा दारा के दूसरे वर्ष के छठे महीने की पहली तारीख में थी। उसकी दूसरी भविष्यवाणी सातवें माह में और अंतिम भविष्यवाणी नौवें महीने में थी। जकरिया भी अपनी भविष्यवाणी का काल मादी राजा दारा के दूसरे वर्ष के आठवें महीने में दर्शाता है, अर्थात हग्गे के सातवें महीने और नौवें महीने की भविष्यवाणी के बीच जकरिया की भविष्यवाणी थी। जकरिया अध्याय एक पद एक। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के आठवें महीने में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास यहोवा का ये वचन पहुंचा। हम देखते हैं कि जकरिया और हगाय एक ही समय भविष्यवाणी कर रहे थे। ये दोनों बाबुल से लौटने के बाद के भविष्यद्वक्ता थे। इसराइल के वंशजों में से लगभग 50,000 जन लौट कर आ गए थे। बाइबल की 70 वर्षीय बंदवाई ने इनसे मूर्ति पूजा छुड़वा दी थी। इसी मूर्ति पूजा के कारण वे बंदवाई में गए थे। वहां उन्होंने एक नई बात सीखी थी। वे व्यापार करने लगे थे क्योंकि बाबुल विश्व व्यापार का केंद्र था। यहूदियों की एक विशेषता है कि वे कोई भी काम शीघ्र सीख जाते हैं और उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण और 70 वर्ष वहां रहने के पश्चात वहां के वातावरण में घुल मिल गए, इसलिए अनेक इसराइली लौट कर नहीं आए। वे वही बस गए। अब तक वे धनी व्यापारी बन गए थे। उन्होंने बाबुल के व्यापार को अपने हाथों में ले लिया था। उन्हें व्यापार का हरेक सबक याद हो गया था। वे आज भी व्यापार में बहुत सफल है। रोचक बात तो ये है कि इसराइली व्यापार में दक्षता प्राप्त कर चुके थे, परंतु जिन्होंने अपनी मातृभूमि लौट आना उचित जाना, वे वहां खेती करने लगे और कृषि विज्ञान में दक्षता प्राप्त कर आज भी वे विश्व को कृषि विज्ञान सिखाते हैं। अब बाबुल से बैंक कर्मी, व्यापारियों और दुकानदारों का समूह अपने देश लौट जाता है और वहां खेती आरंभ करता है। शीघ्र ही वे खेतों की सिंचाई में ड्रिप सिस्टम को अपनाते हैं, जिसमें खेत को पानी बूंदों द्वारा दिया जाता है। स्प्रिंकलिंग सिस्टम, जिसमें खेतों के फुवारों द्वारा पानी दिया जाता है, यही सब कुछ विकसित करके रेगिस्तान में खेती आरंभ कर दी। आज वे कृषि में बहुत लाभ उठा रहे हैं। उनके ताजे फलों से और सब्जियों से यूरोप पूरे वर्ष भरा रहता है। वे व्यापार में भी इतना आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने वही बस जाना उचित जाना। इसका उल्लेख जकरिया की कुछ भविष्यवाणियों में है। जो लौट कर आए थे वे अपने देश की परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं थे। जब आप किसी स्थान को छोड़ते हैं तो वहां की यादें साथ ले जाते हैं, और विशेष करके जब आप छोटे बच्चे रहे हो। मनुष्य के मन में अपने बचपन के स्थान जाने की सदैव एक लालसा बनी रहती है, परंतु होता क्या है, वहां आप वो नहीं पाते जिसको देखने की कामना आपके मन में थी। अतः जब वे आए तो यरूशलेम संपूर्ण विनाश की स्थिति में था। उन्होंने स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने मलबा समतल करके मंदिर का पुनर्निर्माण आरंभ कर दिया, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने ऐसा विनाश ढाया था कि मंदिर का पुनरुद्धार असंभव था, इसलिए इन्होंने नए सिरे से मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया, परंतु शीघ्र ही हताश हो गए। सुलेमान ने उस मंदिर के निर्माण में 150,000 मजदूर और 3,000 पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न था, उसे धन की घटी नहीं थी। ये मंदिर प्राचीन संसार का एक आश्चर्य कर्म था। शीबा की रानी ने आकर अपनी आंखों से उस मंदिर को देखा तो कहा, मैंने महिमा का वर्णन तो बहुत सुना था, परंतु आधा भी मुझे सुनाया नहीं गया था। उसने बड़े पत्थरों का उपयोग किया था। लेबनान से देवदार की लकड़ी लाई गई थी, उसे पूरे सोने से मढ़ा गया था। सोना तो नबूकदनेस्सर उतार कर ले गया था, वो पीतल के विशाल स्तंभ भी तोड़कर बाबुल ले गया था। जो रह गया था वे विशाल पत्थर थे, जिन्हें ये लोग हिलाने में भी असमर्थ थे। मंदिर का पुनर्निर्माण आरंभ करने के कुछ समय पश्चात उस क्षेत्र के लोग उन्हें सताने लगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने उसे बनाना ही छोड़ दिया। नहीं हो सकता, हमारे वश का नहीं है, हम थोड़े से लोग क्या कर पाएंगे। अब हग्गे ने उन्हें प्रेरित किया, तुम लोग क्या कर रहे हो, ध्यान दो, तुम्हारी फसल खराब हो रही है। तुम बीज तो बहुत डालते हो, परंतु फसल बहुत कम काटते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जेब फटी है, तुम्हारा पैसा नष्ट हुआ जा रहा है, परमेश्वर का घर विध्वंस पड़ा है। हग्गे उन्हें मंदिर के पुनरुद्धार के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने उन्हें ये प्रतिज्ञा भी दी कि यदि वे ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। अपने कैलेंडर पर आज ही तारीख पर चिन्ह लगा दो और स्वयं देख लो कि परमेश्वर के घर के निर्माण के आरंभ होते ही परमेश्वर तुम्हें आशीष देना आरंभ कर देगा। यही वो समय था जब जकरिया ने भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की थी। उस समय संभवतः वो युवा था। छोटे भविष्यद्वक्ताओं में यीशु के आगमन का ज्ञान जकरिया की भविष्यवाणी में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, और उसने अन्य सब छोटे भविष्यद्वक्ताओं की मसीह संबंधित कुल भविष्यवाणी से अधिक भविष्यवाणियां लिखी है। जकरिया की पुस्तक में मसीह के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी का अध्ययन करेंगे तो आप चकित रह जाएंगे। जकरिया ने अद्भुत भविष्यवाणियां की है। ये भविष्यवाणियां आज पूरी हो रही है, वरन पिछले कुछ वर्षों में भी पूरी हो चुकी है। आप पढ़कर अचंबा करेंगे कि परमेश्वर ने उसे इसराइल के वर्तमान इतिहास का कैसा अद्भुत ज्ञान दिया था। अतः जकरिया की पुस्तक के आरंभ में पाते हैं, राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया के पास यहोवा का ये वचन पहुंचा। जकरिया अध्याय 1:1 से लेकर 3 तक। जो बेरेकाया का पुत्र और इदो का पोता था, यहोवा का ये वचन पहुंचा, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। युगों से परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी का यही संदेश देता रहा है, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब राजा आसा कूशियों को पराजित करके आ रहा था, तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। दूसरा इतिहास अध्याय 15:2। हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामिन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुम से मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। यहां ध्यान दीजिए कि परमेश्वर किसी को बाध्य नहीं करता है। वो आपको बाध्य नहीं करता कि आप उससे प्रेम रखें। वो आपको बाध्य नहीं करता कि आप उसके निकट रहें। वो तो केवल आपको ये बता देता है कि वो आपसे प्रेम रखता है। अपने प्रेम के कारण वो आपके लिए कुछ भी करेगा, परंतु चुनाव आपको करना है कि आप उसके संग संग चले। यहां निर्णय लेने का उत्तरदायित्व उसने आपके ऊपर डाल दिया है। उसने आपके उद्धार के लिए अपनी ओर से सब कुछ कर दिया है। उसने आपकी आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कर रखा है। परमेश्वर ने तो कदम उठा लिया है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कदम उठाते हैं या नहीं। वो तो सदैव प्रतीक्षा करता है, वो आपको आमंत्रित करता है, परंतु उसके निकट आना तो आप ही का काम है। अतः परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम्हारे पुरखाओं ने ना तो सुना और ना ध्यान दिया। जकरिया अध्याय 1:4। अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो अगले भविष्यद्वक्ता ये पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। भविष्यद्वक्ता पुकार पुकार कर उनके पितरों से यही कहते रहे, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जकरिया अध्याय 1:4-5। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहां रहे? अब तो सबक सीख लो। उनके विनाश का कारण था कि वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे और बंधुआई में बाबुल ले जाए गए। जकरिया अध्याय 1:6। परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने पास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। अर्थात भविष्यत वक्ताओं को दी गई चेतावनी नहीं सुनने का परिणाम ये हुआ कि वे बंधुआई में ले जाए गए। जकरिया ने 10 दर्शन देखे। दर्शन जागते हुए स्वप्न देखने के समान है। यहां वो उन घटनाओं को साक्षात देख रहा था। दर्शन स्वप्न की भांति बार बार टूटता है। स्वप्न द्वारा प्राप्त परमेश्वर के संदेश की समझ प्राप्त करने के लिए स्वप्न का अर्थ निर्धारण आवश्यक होता है। ये स्वप्न भी चिन्ह और प्रतीकों का था, अतः इसके अर्थ को समझने की आवश्यकता है। जकरिया को परमेश्वर ने दर्शन दिखाए और अनेक स्थानों पर उनका अर्थ भी समझाया। परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तू इसका अर्थ समझता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब परमेश्वर ने इसे उसका अर्थ समझाया, परंतु जहां परमेश्वर ने उसे अर्थ नहीं समझाया वहां हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। परंतु ध्यान दीजिए कि दृष्टांतों में, उपमाओं में और स्वप्नों में व्याख्यात्मक एक रूपता होती है। ये भाषा विज्ञान का शब्द है, अतः आपको इसकी अधिक चिंता नहीं करनी है। परंतु एक बात अवश्य ध्यान रख ले कि चिन्हों का अर्थ कभी नहीं बदलेगा। जैसे बीज परमेश्वर का वचन है, भूमि संसार है और आकाश के पक्षी शैतान है आदि। इसी प्रकार जहां तेल का उल्लेख आता है तो निश्चय जान लीजिए कि उसका अर्थ है पवित्र आत्मा। पंडुक भी पवित्र आत्मा का प्रतीक है। इसी को व्याख्यात्मक एक रूपता कहते हैं। जकरिया अध्याय 1:7-8। दारा के दूसरे वर्ष के शबात नाम 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरकाया का पुत्र और इदो का पोता था, यहोवा का वचन यूं पहुंचा। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और सुरंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। एक पुरुष लाल घोड़े पर सवार है और उसके पीछे भिन्न भिन्न घोड़े खड़े हैं, और वो मेहंदियों के पौधों के मध्य खड़ा है। जकरिया अध्याय 1:9। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? यदि आप ही हो तो क्या समझेंगे? इसकी एक व्याख्या है जिसे ना तो मैं समझता हूं और ना ही उसका मैं अर्थ निर्धारण करता हूं। ये व्याख्या शब्दों का हेर फेर है। उदाहरण स्वरूप, कोई व्याख्या करने वाला दृष्टांत को लेकर उसके प्रत्येक भाग को एक प्रतीक बना देता है। वो उस दृष्टांत को आधार बनाकर अपना उपदेश देता है और जो वो चाहता है कहता चला जाता है। वो प्रतीकों का अपना अर्थ लगाता है। यदि ऐसा ही है तो दृष्टांतों की क्या आवश्यकता? दाऊद ने नाले से 5 पत्थर उठाए थे, उसी पर उपदेश दे दीजिए। ऐसी शिक्षाएं परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि आप शब्दों के हेर फेर द्वारा जैसा चाहे वैसा उपदेश तैयार कर सकते हैं। मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं ऐसे प्रचार का अभ्यस्त नहीं हूं। जब तक मैं लाल घोड़े पर सवार और लाल रंग बिरंगे तथा श्वेत घोड़ों का अर्थ नहीं जान लूं, मैं इसके विषय कुछ नहीं कह पाऊंगा। जकरिया बुद्धिमान था क्योंकि उसने स्वर्गदूत से पूछा, इसका अर्थ क्या है? जिस स्वर्गदूत ने उसे बातें की थी उसने उससे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। जकरिया अध्याय 1:10-11। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था उसने कहा, ये वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। इस समय इसराइल के वंशज संपूर्ण पृथ्वी पर फैल चुके थे, अतः जिन्हें उनका समाचार लेने भेजा था आकर बोले, सारी पृथ्वी पर शांति और चैन है। परमेश्वर के जन घर से बेघर थे और समस्त जातियां सुख और शांति से रह रही थी। जकरिया अध्याय 1:12-13। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, सो तू उन पर कब तक दया ना करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। स्वर्ग दूत के पूछने पर कि यरूशलेम और यहूदा कब तक बेघर रहेंगे, परमेश्वर ने उससे जो कहा इससे मेरा दिल खुश हो गया। यहोवा ने अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जब निराशा में परमेश्वर को पुकारते हैं तब वो हमारे साथ कैसा मधुर व्यवहार करता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वो जब भी मुझसे बातें करता है उसके शब्द अच्छे और ढाढ़स बांधने वाले होते हैं। जकरिया अध्याय 1:14-15। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सियोन के लिए बड़ी जलन हुई है, और जो जातियां सुख से रहती है उनसे मैं क्रोधित हूं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर अन्य जातियों को इसराइल के लिए दंड का साधन बनाए हुए था, परंतु उन्होंने आवश्यकता से अधिक हानि पहुंचा दी। जकरिया अध्याय 1:16। इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि इसराइल की पुनर्स्थापना की जाएगी। इस प्रतिज्ञा से वे जो मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे थे आश्वस्त हो गए थे कि परमेश्वर के घर का पुनर्निर्माण संभव है। उन्हें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि वो बनाया जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि ये प्रतिज्ञा दो मुखी है। मंदिर का पहला पुनर्निर्माण इसी समय होगा और दूसरा अंतिम समय में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में आप देखेंगे कि यूहन्ना को एक सरकंडा दिया गया है तथा उसे मंदिर और उसके सिवानों को नापने के लिए कहा गया है। ये महाक्लेश के समय की बात होगी। मेरे विचार में तो अब किसी भी समय यरूशलेम के मंदिर का पुनर्निर्माण होना आवश्यक है। परमेश्वर के घर का निर्माण यरूशलेम में होगा, उसका वायदा है, उसने कहा। जकरिया अध्याय 1:17। फिर ये भी पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सियोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। यद्यपि उस समय यरूशलेम मलबे का ढेर बना हुआ था, परमेश्वर ने उसे फिर खड़ा करने की प्रतिज्ञा दी। उसका दूसरा दर्शन जकरिया अध्याय 1:18-19। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि चार सिंह है। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा और इसराइल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। ये चार सिंह चार राज्यों के प्रतीक है। ये उसी स्वप्न के तुल्य है जो नबूकदनेस्सर ने देखा था कि एक प्रतिमा चार धातुओं से बनी है, या दानियल के स्वप्न के चार पशु। ये चार राजा है जिन्होंने इसराइल को तितर बितर किया। बाबुल राज्य, मादी राज्य, यूनानी राज्य, रोमी राज्य। ये चार अन्य जातियां हैं जिन्होंने परमेश्वर की प्रजा को कष्ट दिया। जकरिया अध्याय 1:20। फिर यहोवा ने मुझे चार लोहार दिखाए। ये दर्शन एक दूसरे से हटकर है। पहला दर्शन में एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ मेंहदियों के बीच खड़ा है। दूसरे दर्शन में उसने चार सींग देखे। चार सींगों से आप क्या समझते हैं? स्वर्गदूत ने उसे बताया, ये क्या है? तीसरे दर्शन में यहोवा ने मुझे चार लोहार दिखाए। जकरिया अध्याय 1:21। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? हे प्रभु, ये यहां क्यों आए हैं? जकरिया अध्याय 1:21 में आगे लिखा है, उसने कहा, ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सर ना उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे। ये उन राज्यों को नाश करने आए हैं जिन्होंने परमेश्वर की प्रजा को यातना पहुंचाई है।